डिस्लेक्सिया क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्लेक्सिया के बारे में डिटेल में जानते हैं। डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसे रीडिंग डिसएबिलिटी भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर ब्रेन के उन एरियाज को अफेक्ट करता है जो लैंग्वेज प्रोसेस से जुड़े होते हैं। अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी तो आप इस डिसऑर्डर को आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो मूवी डिस्लेक्सिया पर ही बेस्ड थी। डिस्लेक्सिया एक ऐसी कॉमन कंडीशन होती है जिसमें रीड करना काफी टफ लगा करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 20% लोगों में ये पाया जाता है। ये किसी भी एज के पर्सन में मिल सकता है, यानी बच्चों में भी और अडल्ट में भी, लेकिन ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजीज होती है जिनकी हेल्प लेकर रीडिंग के इस चैलेंज से डील करना आसान बना सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत तो होती ही है, साथ ही फैमिली और दोस्तों के कंसर्न की भी। डिस्लेक्सिया की वजह से रीडिंग के अलावा राइटिंग, स्पेलिंग और मैथ्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि डिस्लेक्सिया से डील कर रहे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस में ये रीडिंग इश्यू कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस की तो कोई कमी ही नहीं होती, बस उन्हें बिना मिस्टेक के अच्छे से रीड करने में डिफिकल्टी आती है। फ्लुएंटली रीड कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जब डिस्लेक्सिया से डील कर रहे पर्सन के सामने रीड किया जाता है तो अक्सर उस टेक्स्ट को समझने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल भी नॉर्मल होता है और विजन भी, इसलिए ऐसे बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर उन्हें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर एजुकेट किया जाए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स को जानते हैं। छोटे बच्चे देर से बोलना शुरू करें, लेटर्स याद रखना उन्हें टफ लगे, वो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करें, नर्सरी राइम्स और सॉन्ग्स को सीखना उनके लिए डिफिकल्ट हो, तो डिस्लेक्सिया की पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को अपने क्लासमेट्स की तरह रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बात को समझ पाना और लैंग्वेज से डील करना उन्हें टफ लगता है, वो सीक्वेंसेस को याद नहीं रख पाते, वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को नहीं बता पाते, राइट वर्ड्स को फाइंड आउट करना और वर्ड्स की सही स्पेलिंग बता पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी तरह टीनेजर्स और अडल्ट में भी डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे स्लो रीडिंग, स्पेलिंग डिफिकल्टीज, वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग एक्सरसाइज कम्प्लीट करने में ज्यादा टाइम लगना, याद रखने में दिक्कत आना, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आना, एक्सप्रेशंस और जोक्स को नहीं समझ पाना। इस तरह की सिम्टम्स रखने वाले लोग यानी डिस्लेक्सिया से डील करने वाले लोगों के बिहेवियर में भी अब नॉर्मेलिटी आने लगती है। उन्हें लो सेल्फ एस्टीम फील हो सकती है, उन्हें एंजाइटी और अग्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रहने की बजाय वो अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स में मिलने वाले डिस्लेक्सिया के ये सिम्टम्स जान लेने के बाद आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये सिम्टम्स, ये लक्षण नॉर्मल पर्सन की हैबिट्स और स्किल से काफी मैच करते हैं। यानी अगर कोई बच्चा देर से बोलना शुरू करे या वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करे तो इसका मतलब ये कन्फर्म नहीं होगा कि उसे डिस्लेक्सिया है। इसी तरह अगर किसी टीन या अडल्ट को स्लो रीडिंग की हैबिट है या उसकी मैथ्स बहुत ही कमजोर है तो उसे भी डिस्लेक्सिया हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि बचपन से ही बच्चे की एक्टिविटीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो पेरेंट्स बहुत आसानी से जान सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। इसी तरह अडल्ट्स भी अगर ऐसी किसी रीडिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उन्हें भी बिना पैनिक किए डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि डिस्लेक्सिया का मतलब विजन के साथ प्रॉब्लम होती है, जबकि ये प्रॉब्लम लैंग्वेज से जुड़ी होती है। अब डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स जान लेने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस डिस्लेक्सिया के कॉज क्या होते हैं, यानी किन कारणों से डिस्लेक्सिया डिजीज हो सकती है। तो अभी तक तो डिस्लेक्सिया का कोई पिन पॉइंट कॉज तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके पॉसिबल रीजंस ये माने जाते हैं, जीन्स और हेरिडिटी, क्योंकि डिस्लेक्सिया एक फैमिली की कई जनरेशन में मिलता है। 40% सिबलिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिस्लेक्सिया होता है। इसके अलावा ब्रेन की एनाटॉमी और एक्टिविटी भी डिस्लेक्सिया का रीजन बनती है, और बिना डिस्लेक्सिया वाले लोगों के ब्रेन इमेजेस में डिफरेंस मिलता है। डिस्लेक्सिया की इन कॉजेज के बाद अब आपको बताते हैं कि डिस्लेक्सिया को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके चार टाइप्स हैं। पहला है फोनोलॉजिकल डिस्लेक्सिया, इसमें वर्ड बनाने के लिए लेटर्स में साउंड ऐड करने में परेशानी होती है। दूसरा है सरफेस डिस्लेक्सिया, इसे विजुअल डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है, इसमें वर्ड को देखकर समझने में दिक्कत आती है। تیسرا ہے ریپڈ نیمنگ ڈیفیسیٹ، اس میں جلدی جلدی لیٹرز اور نمبرز بتانے میں پرابلم ہوتی ہے، اور چوتھا ہے ڈبل ڈیفیسیٹ ڈسلیکسیا، جس میں فونالوجیکل ڈسلیکسیا اور ریپڈ نیمنگ ڈیفیسیٹ دونوں پائے جاتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کے ڈفرینٹ ٹائپس جاننے کے بعد اب باری ہے ڈسلیکسیا کے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننے کی، تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس ریڈنگ ڈس آرڈر کا پتہ پیرنٹس کو آسانی سے لگ سکتا ہے، اور اگر ٹیچر بچے کی ریڈنگ ہیبٹ پر غور کرے تو وہ بھی اسے پہچان سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کے ڈائگنوس کے لیے اسپیشلسٹ کی ہیلپ دی جاتی ہے، جو اس بچے کی ایج، ڈیولپمنٹ اور سمٹمس کے بیس پر کچھ پرکار کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اورل لینگویج اسکلس، جس میں لسننگ اور اسپیکنگ شامل ہوتی ہے، ورڈ ریکگنیشن، ووکیبلری، ریپڈ نیمنگ، ریڈنگ ریٹ اور فلوئنسی، آڈیٹری وربل ورکنگ میموری، ڈی کوڈنگ، اسپیلنگ، فونالوجیکل پروسیسنگ اور ریڈنگ کمپریہینشن۔ اسپیشلسٹ کو فیملی ہسٹری اور ٹیچر کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی پرٹیکولر کیور تو نہیں ہے، بس جب اس کے سمٹمس دکھائی دے تبھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کئی بار تو بہت سالوں تک اس کا پتا ہی نہیں چل پاتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب اس رائٹنگ ڈسیبلٹی کا پتا چلے تب اسے ڈائگنوس کر کے اپنی اسکلس کو امپروو کیا جا سکتا ہے اور لائف کو بیٹر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بس فیملی، فرینڈس کا سپورٹ اور اسپیشلسٹ کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوستو، ڈسلیکسیا ڈے ہر سال ورلڈ ڈسلیکسیا ویک کے تھرسڈے کو منایا جاتا ہے۔ اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، تاکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایجوکیشن، کریئر، انوویشن اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ نالج کو ہم یوں ہی لگاتار بڑھاتے رہ سکیں۔
اس آڈیو کو IVR پر پسند کر اسے آگے بھیجنا چاہتے ہیں تو 5 دبائے۔ اس کا آڈیو ID نمبر آپ کو SMS کیا جائے گا، اور اگر آپ انیبل وانی ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو پسند کیے گئے آڈیو کو فارورڈ کریں۔